اولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدي. ये लोग हैं जिनको अल्लाह ने हिदायत दी, बस आप इनकी हिदायत की इक्तदा करें, पैरवी करें। कौन लोग? ये सारे वो पैगंबर हैं जिनको अल्लाह ने हिदायत दी। तो इस हिदायत की वजह से आप इनकी पैरवी करें जो अल्लाह ने इनको हिदायत दी है। इसमें इसका मतलब है जो लोग हिदायत पे होते हैं, सीधे रास्ते पे, तौहीद पे, उनको आप फॉलो करना चाहिए। ऐसी फॉलोइंग में कोई हर्ज नहीं है जैसे अंबिया हैं। और फिर उलमा ने इस आयत से दलील ली है कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम तमाम अंबिया से अफजल है, इसलिए कि इस आयत में कहा गया कि ए नबी आप इन सब की इक्तदा करें, इन सबको फॉलो करें। तो इसका मतलब उन्होंने लिया, इंटरेस्टिंग बात है ये कि उन्होंने ये लिया, मुफस्सिरीन ने ये लिखा है कि जैसे दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम नियमतों में बहुत शुक्र अदा करने वाले थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ भी है ना, रब्बी औज़िनी अन्ना अशकुरा निअमतक अल्लती अन्अमत अलैया, वो तो देखें तो शुक्र की वो मांगते हैं अल्लाह से कि अल्लाह मुझे शुक्र की तौफीक दे। तो और इसी तरह अय्यूब अलैहिस्सलाम आजमाइशों पर सब्र करने वाले थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम सब्र और शुक्र दोनों उनके अंदर कंबाइंड था, मूसा अलैहिस्सलाम शरीयत के बानी थे, मौजज़ात के हामिल थे, ज़करिया अलैहिस्सलाम यहया ईसा और इलियास अलैहिस्सलाम ज़ुहद में बहुत थे, तकवा में ज़ुहद में बहुत ज्यादा थे, रासिख इस्माइल अलैहिस्सलाम सिद्क उनमें गालिब था, यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में बहुत गिड़गड़ा कर दुआ करने वाले थे। तो इन सारे अंबिया का अल्लाह ने जिक्र किया, उनका इनके अंदर कोई शर्फ है, कोई फजीलत है, कोई उनकी सिफत है जो गालिब है, यानी वैसे तो वो सारे ही बहुत सालेहीन थे मगर कोई एक एक जिसको कहेंगे ना प्रोमिनेंट फीचर उनका है, कोई ऐसी सिफत है जो गालिब है। तो अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इन तमाम अंबिया की तबाह करें। तो यानी आपको फरमा दिए कि सारी सिफात कलेक्टिव आपके अंदर है, तो आप सारी सिफात के हामिल थे। कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरा, कह दीजिए मैं तुमसे कोई कुछ मांगता थोड़ी हूँ, कोई फीस तो नहीं मांगता, हर जगह ने फीसें रखी होती, मैं तुमसे तो कोई फीस नहीं मांगता। इन हुआ इल्ला ज़िक्रा लिल आलमीन, ये तो नसीहत है तमाम जहान वालों के लिए। आओ तुम्हें सीक्रेटली कोई बात बता दूं, आओ तुम्हें सीक्रेटली कोई तुम मुझे कुछ दो तो फीस दोगे तो मैं कुछ ऐसी बातें तुम्हें बताऊं, नहीं ये सबके लिए नसीहत है। लेकिन लोगों का हाल क्या है, वमा कदरुल्लाह हक्का कदरिह, उन्होंने अल्लाह की कदर नहीं पहचानी जैसी पहचाननी चाहिए थी, जैसी कदर करनी चाहिए थी। कदर का मतलब क्या होता है? कदर कहते हैं अंदाजे को, तो यानी अंदाजा किसी का लगाना। तो क्या मतलब हुआ अंदाजा लगाना, यानी उसकी पहचान कर लेना, किसी की हैसियत का अंदाजा कर लेना, उसकी मारफत हासिल कर लेना, ये है अंदाजा। कि उन्होंने अल्लाह की वैसे उसको कैसा पहचाना ही नहीं, जैसे पहचानना क्या हक था। ठीक है, इस कालू जब उन्होंने कहा, किस तरह नहीं पहचान की, किस बात से पता चलता है कि उन्होंने अल्लाह की कदर नहीं की। इस कालू जब उन्होंने कहा, मा अंजल अल्लाह अला बशरिन मिन शय, अल्लाह ने तो कोई चीज इंसानों पे उतारी नहीं, किसी इंसान पे भी नहीं कोई चीज उतारी। ये किसके लिए कहा जा रहा है, किस उन्होंने कहा? इसमें मुफस्सरीन का इख्तलाफ है कि ये आयत यहूदियों के मुतल्लिक नाजिल हुई या मुशरिकीन के मुतल्लिक नाजिल हुई, कि किसने ये कहा था। असल में ये मक्की सूरत है और मुशरिकीन मक्का से ही बात हो रही है, मगर मुशरिकीन मक्का जो थे वो जा के बातें किससे पूछते थे, यहूदी उलमा से, उनसे बातें पूछ पूछ के आके फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते थे। इनको खुद तो नहीं, उनको अहले इल्म समझते थे ना, और उनसे पूछते थे अब हम क्या कहें इनको, अब हम क्या बात लगाएं इनको। तो वो जब उनसे पूछ के आते थे तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ने तो किसी इंसान पे कोई चीज उतारी ही नहीं, इनको सिखा दिया, ये भी आके यही कहने लगे। तो उनको कहा जा रहा है इन्होंने अल्लाह की कदर ही नहीं पहचानी, इसलिए क्योंकि ये अल्लाह ताला की कदर ना करना है जब रिसालत को ना माने, अल्लाह ताला की पहचान ना होना है अगर कोई रिसालत का इनकार करता है। क्योंकि तौहीद और रिसालत साथ साथ है, जो अल्लाह ताला को मानता है वो उसके रसूलों को भी मानेगा, और जो रसूलों को मानता है तो रसूलों का पैगाम एक ही था तौहीद, वो अल्लाह को भी मानेगा। ये तो दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। इन्होंने अल्लाह की कदर नहीं पहचानी। जब इन्होंने कहा नहीं अल्लाह ने तो नहीं कुछ पे उतारा, किसी इंसान को कोई वही उतारी नहीं उस पे, कोई मन अंदर अल किताब अल्लाह दी जा भी मूसा, तो इनसे सवाल पूछे तो फिर किसने उतारा उस किताब को जो मूसा अलैहि सलाम पे आई? तुम तो कहते हो क्योंकि यहूदी यही कह रहे थे ना, यहूदियों ने इनको ये कहा था, तो फिर बताओ मूसा अलैहि सलाम पे जो किताब उतरी थी वो किसने उतारी थी? अगर तुम कहते हो अल्लाह ने किसी बंदे पे को उतारी थी, तो तुम्हारी तो अपनी बात तुम्हें कॉन्ट्रोडिक्ट कर रही है। नूर व हुदन लिन्नास, जब वो किताब नूर भी थी हिदायत भी थी लोगों के लिए। नूर क्या मतलब? यानी कि कोई लाइट थी उसमें से निकलती, मतलब ये कि जहालत के शिर्क के अंधेरों को दूर करने वाली और हिदायत का रास्ता दिखाने वाली थी वो लोगों के लिए। तौरात भी ऐसी थी, कुरान के बारे में भी आता है कुरान नूर और हुदा है, और तौरात भी ये थी। तजअलूनहु क़रातीसा, उन्होंने उसको पारा पारा कर दिया, यानी उसको बात कहते हैं कि इन लोगों ने अपनी किताब को वर्का वर्का किया हुआ था, ये अलग अलग रखा हुआ था ताकि जब जरूरत पड़े तो अपने फायदे वाला वर्का निकाल के उसको बस जाहिर कर दो और बाकी छुपा लो। एक साथ नहीं ना कंपाइल किया था, अलग अलग करातीज मैंने वर्का वर्का करके रखी हुई थी। तो बदूना हुआ तो खून का सीरा, जाहिर करते हो उसको और बहुत सारा छुपा जाते हो, क्योंकि उसमें तो हक था ना, बहुत सारी बातें उसमें से छुपा लेते थे। छुपाने की जरूरत क्यों पड़ती थी? क्योंकि छुपाते इसलिए थे कि फिर अपनी मनमानियां कर सके ना, अगर वो बता दी तो फिर अपना कैसे बता देते। जैसे आपको पहले वाक्या बताया था रजम का वाक्या था, कि जब इन्होंने हाँ बहुत किसी अमीर कबीर खानदान के लोगों ने शादीशुदा ने जिना किया, तो इनकी भी किताब में यही था कि रजम की सजा है, इन्होंने उसको छुपा लिया क्योंकि उसको बचाना चाहते थे। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बशारते थी, उनको छुपाना चाहते थे। इस तरह और बहुत सही आयते हैं, देखिए इसलिए छुपा ली कि कोई भी फतवा लेने आएगा उसके मुताबिक उसको हम खुद ही बता देंगे ऐसे कर लो ऐसे ना करो। अल्लम तो मालम तालम अंतुम वला आबाकुम, और तुम सिखाए गए जो नहीं जानते थे तुम और ना तुम्हारे बाप दादा। यानी यहूदियों को खुद भी उसका नहीं इल्म था, ना इनके आबाओ अजदाद का था, उनको भी नहीं समझ थी तौरात की उन आयात की जो कुरान के जरिए समझाई गई उनको। उल्लिम तुम समझाए गए सिखाए गए जो नहीं तुम जानते थे, यानी तौरात में भी इनको नहीं समझ आती है, वो कुरान के जरिए इनको अल्लाह ताला ने समझाया। उल्लाह, अल्लाह ही ने ये कुरान नाजिल किया, अल्लाह ही ने ये सिखाई तुम्हें बातें। उल्लाह का मतलब ये है कि जो तौरात लेकर आए मूसा अलैहि सलाम उसको नाजिल करने वाला भी अल्लाह ही है, और उसके सिवा कौन हो सकता है? कुलिल्लाह, क्योंकि आगे पीछे सवाल आया ना किसने नाजिल किया, देखें पीछे इसके सवाल का जवाब है जो आया मन अंजल किताब अल्लज़ी जा बिही मूसा नूरन व हुदन लिन्नास तजल्लुना करके पूरी बात करके फिर कुलिल्लाह इसका जवाब दिया गया कि अल्लाह ही है जिसने नाजिल किया तौरात को भी इंजील को भी और इस कुरान को भी। ثم ذرهم في خوضهم يلعبون, फिर ये नबी अब इनको छोड़ दें अपने ये इन्हीं खुराफात के अंदर खेलते फिरें अपनी बहसों में पड़ते हैं। और ये तो वहादा किताब, और ये किताब अंजलनाहु मुबारकुन, हमने नाजिल किया ये बाबरकत है, बरकत वाली किताब है। बरकत किस चीज को कहते हैं? खैर कसीर, ऐसी खैर जो बहुत ज्यादा और इसमें बढ़ोतरा होता जाए, यानी बढ़ती जाए। ये किताब वो है जिसमें इतनी खैर है और ये खैर बढ़ती जाती है। जो इस किताब को अपनी जिंदगी में शामिल कर लेता है ना, वो इतनी सी सिर्फ खैर नहीं मिलती, कसीर खैर, और खैर बढ़ती जाती है। अब कैसे इस चीज को आप समझें कि इसके ये मुबारक है बाबरकत है? सिंपल जुबान में मैं आपको समझाती हूँ। देखें ये किताब ना वो सब कुछ आपको समझा देती है, सच बात है ये भी मैं बिल्कुल आपको लेमैन्स लैंग्वेज में समझा रही हूँ, बिल्कुल कोई मुश्किल बातें नहीं। ये किताब आपको वो सब समझा देती है जो आप पूरी जिंदगी गुजार के जब एंड पे पहुंचते हैं तो तब आपको समझ आती है वो बातें। फिर आप कहते हैं जिंदगी की तो समझ तब आई जब जिंदगी गुजर गई, ये किताब आपको जिंदगी में ही वो चीज समझा देती है जो आपको जिंदगी के एंड में समझ आनी होती है। और जो फिर इसको अपनी जिंदगी के मराहिल में थाम लेता है वो फायदा पा जाता है, क्योंकि ये उसको फिर गाइड करती है। आप देखें, बहुत सारे बूढ़ों के साथ बात हुई तो सब तकरीबन का यही एक बात होती थी कि हाय काश हम इस कुरान को पहले समझ लेते, काश हमें पहले पढ़ लिया होता, क्योंकि वो बातें वो रियलाइज करते हैं कि हाँ ये सही है, मगर एंड में समझ आती है। इसी तरह बिल्कुल आप समझ लें कि एक माँ है ना, बच्चे को कहती है बेटा पढ़ ले, बेटा ये कर ले, बेटा अपना वक्त ना जाया कर, बेटा बुरे दोस्तों के साथ ना रह। अब वो बच्चा आज उसको ये बातें फालतू लग रही हैं, कल वो रियलाइज करता है कि ये बातें तो बिल्कुल सही थी, और वो अपने बच्चों को वही बातें कह रहा होता है। तो वो जो बातें उस वक्त उस अमल कर लेता तो उसके लिए अच्छा होता। इसी तरह कुरान है, आपको ये जिंदगी में इस तरह गाइड करता है ना, जिंदगी में ऐसे चलाता रहता है, ऐसे रहनुमाई करता है। आप इसकी सुन लेते हैं ना, तो इन द एंड आप जिंदगी में जाकर यही कहेंगे वाकई कुरान ने सच कहा था। और आपको नजर आएगा आपको जब आप एंड जिंदगी के उस पे पहुंचते हैं ना, आप कहते हैं वाकई कुरान कितना सही कहता है। पूरी जिंदगी लगता है आंख जब पकने में गुजर गई, पूरी जिंदगी लगता है कि वो बस एक सुबह से शाम तक का वक्त था। क्या ऐसा नहीं होता? वाकई पूरी जिंदगी गुजर गई, आप पता चला कि हम तो खाली हाथ ही हैं, कुछ भी, ये सब कुछ जो था ये कुछ भी नहीं था, ये तो ऐसे ही एक जिसको आप कहते हैं मिराज, इसको उर्दू में क्या कहते हैं, सराब था। वो समझ जब आती है उस वक्त, वो ये सारी समझें आज बता देता है, ये सब आज समझा देता है। जब उस वक्त जाके इंसान पछताए, उससे बेहतर है कि आज इंसान जिंदगी के अंदर इस कुरान को थाम ले, तो ये बरकतों वाली किताब है, ये खैर और बरकत के दरवाजे ऐसे खोल देती है। किस तरह खोलती है, कैसे मुबारक है, कैसे बरकत। हम तो बस सोचते हैं बरकत हो जानी, सबको बुला लो वो आगे यहाँ पे कुरान पढ़ लें, ये बड़ी बरकत है, बड़ी बरकत है। क्या है कि मतलब पैसे और मिल जाएंगे तो कोई बीमार बीमार नहीं होगा, चलो सब ठीक रहेगा काम। नहीं, हाँ फिर तो बहुत ही छोटा इसको लिया, फिर आपको पता ही नहीं कि इसकी बरकतें क्या है। ये अमल पे उभारती है, ये अल्लाह की इताअत की तरफ लेकर आती है, ये वो रास्ता दिखाती है जिसमें हमेशा की कामयाबी है, जिसमें एक इटर्नल लाइफ जो कभी ना होने खत्म होने वाली जिंदगी उसकी कामयाबी है, उस रास्ते को दिखाती है, उस पर चलना आसान कर देती है। इसमें ये खैर और बरकत तो सबसे बड़ी है। आप छोटे छोटे फायदों को लेके देखो, वो बात है कि वो तोप से एक मच्छर को मारना, भाई ये तो इतना बड़ा कलाम है। आप उसे कह रहे हैं कि पैसे मिल जाएंगे, आप उसे कह रहे हैं कोई बीमार नहीं होगा, ला जो ये जो सारे पढ़ना शुरू कर दो। ये आपने क्या समझा इसको? ये तो रहनुमाई करती है, ये जिंदगी के रास्तों में अप्स एंड डाउन जब आएंगे ना, उसमें आपको थाम लेगी, ये परेशानी के औकात में आपकी सबसे बेहतरीन साथी होगी। ये वो किताब है, और इसकी खैर बढ़ती ही जाती है, देखो खत्म ही नहीं होती। आप जिंदगी के मरहलों में नहीं सिर्फ आपके साथ रहेगी, कब्र में भी आपके साथ खड़ी होगी, हशर में भी आपके साथ खड़ी होगी। तो इसकी खैर कितनी है, और कौन सी चीज है जो इसका मुकाबला कर सके। मुसद्दिक लिती बैन यदी, और ये तस्दीक करने वाली है जो इससे पहले आए, यानी जो इससे पहले कलाम अल्लाह के आए हैं, यानी तौरात है, इंजील है, उसके अंदर जो भी तौहीद की बातें हैं ये कुरान कहता है वो सब सही थी। फिर उसके बाद ये कुरान कहता है कि वो जो सारी बातें थी इसके अंदर, आखरत के बारे में जो तौरात में आए, जो जन्नत जहन्नुम के बारे में तौरात और इंजील में उतरा, वो सब बातें सही थी। तो ये कुरान आपको बताता है कि पिछली जो किताबों की बातें थी उनकी उनको वेरीफाई करता है, मरने के बाद जी उठना, तकदीर, मलाइका, रिसालत, अल्लाह की जात और सिफात के बारे में जितनी भी ये बातें, ये इंडोर्स करता है कि उनमें सही थी। हालांकि आपको पता है जब भी कोई एक कलाम होता है किसी भी शायर का हो या किसी का, उसके बाद किसी का दूसरा कोई आ जाए तो वो पिछले वाले को कहते हैं, पिछले वाले को ना कहो कि वो अच्छा था इसलिए क्योंकि वो सही था, क्योंकि वो फिर मेरी क्या वैल्यू रहेगी। तो वो कहते हैं वो पिछला सही नहीं था, अब का जो है वो सही है, लेकिन लेकिन कुरान कहता नहीं, उन किताबों में जो उतरा था वो सही था। अब बाकी इसके अलावा उन किताबों के अंदर और शरीयत की बातें थी, ठीक है उनमें नमाज रोजा डिफरेंट होंगे, लेकिन आप ये देखें सब के अंदर था कि नबी की इताअत करो, सब में था शरीयत पे चलो, तो वो तो सारी यही कुरान कहता। कुरा वमन हौला है, और ये ताकि तुम इसलिए कि तुम डराओ इसके जरिए, नबी आप डराएं, वॉन कर दें उम्मुल कुरा को, मक्का वालों को और जो इसके इर्द गिर्द है। उम्मुल कुरा से मतलब मक्का, इसलिए क्योंकि ये तमाम जमीनें समझ लें इसी से फैली है, पूरी जमीन इसी जगह से फैली, समझिए एक सेंटर पॉइंट है पूरी जमीन का। इसके बारे में ये भी कहा गया कि मक्का तमाम दुनिया वालों से पहले आबाद हुआ, इसलिए इसको उम्मुल कुरा कहा जाता है। इसके अलावा और भी मुफस्सिरीन ने लिखा है कि तमाम दुनिया के जो मुसलमान है वो हर दौर में इसको सेंटर ऑफ इबादत समझते रहे, हज इसकी तरफ ही करने आते थे, यानी इवन इस्लाम से पहले भी। तो जैसे बच्चा माँ के गिर्द जमा, बच्चे सारे माँ के गिर्द जमा हो जाते ना, इस तरह लोग इस बस्ती के गिर्द जमा होते थे, तो इसलिए इसको उम्मुल कुरा कहा गया कि बस्तियों की माँ। वमन हौला और जो इसके इर्द गिर्द हैं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो कहा गया कि इस कुरान के जरिए इंतजार करो, और आपने किया भी, आपके बाद कौन करेगा? और इससे पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सिर्फ अरब के लिए नहीं थे रसूल बना के भेजे गए, बल्कि आपको हुक्म है कि मक्का के इर्द गिर्द वालों, जिसमें सारी जमीन आ जाती है क्योंकि ये सेंटर है, इसके हौल में ही सारी बाकी आबादियां हैं, तो सबके लिए आप नबी बना के भेजे गए। और कुरान में और जगह पर आप सूरह आराफ में पढ़ेंगे, कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीअ, मैं तुम सब इंसानियत के लिए रसूल बना के भेजा गया। तो आज भी जो लोग कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अरब के लिए रसूल बना के भेजेंगे, ये बात गलत है। और इसी तरह ये जो मैंने बात आपको कही कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब दुनिया से चले गए, आपकी उम्मतियों का जिम्मेदारी है कि वो इस पैगाम को लेकर पूरी दुनिया तक फैलाएं। والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به, और जो लोग आखरत पर ईमान रखते हैं ना, वो इस पे भी ईमान लाएंगे। इसलिए कि आखरत की जवाबदेही का जिसको एहसास होता है ना, वो जिसको अंदर ये ईमान होगा ना कि मैंने एक दिन खड़े होना है और वहां पे जजा है या सजा है, तो वो जरूर कोशिश करेगा कि हर उस चीज की तरफ बढ़े जिसमें अल्लाह की रजा है, और हर उस चीज से बचे जिसमें अजाब है, तो वो तो जरूर इस पे फिर ईमान लेकर आएगा। وهم على صلاتهم يحافظون, और जो ईमान आखरत पे लाते हैं वही अपनी नमाजों की हिफाजत भी करते हैं। नमाज का क्यों जिक्र सिर्फ किया गया खास तौर पे, और भी तो इबादत हैं, इसलिए कि ईमान लाने के बाद आखरत पे ईमान के बाद अल्लाह पे ईमान के बाद सबसे जो अफजल इबादत है वो नमाज है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने नमाज को सॉरी नमाज जो है वो इंसान के ईमान और कुफर के दरमियान नमाज को तर्क करना है, यानी कुफर के दरमियान शिर्क और कुफर के दरमियान और इंसान के दरमियान क्या चीज है जो के डिफरेंशिएट करती है, वो नमाज है। एक रिवायत आती है कि हजरत मसूर बिन मखजम जो थे वो हजरत उमर की आदत के लिए आए, वो उस वक्त जब हजरत उमर को खंजर मार दिया था और उसी हालत में आपको पता है वो शहीद हो गए थे, उनका हाल पूछने के लिए आया तो घर वालों ने कहा कि जैसा आप देख रहे हैं वैसे ही है। उन्होंने कहा इनको नमाज के लिए उठाओ, क्योंकि एक बेहोशी की सी हालत थी, तो नमाज से ज्यादा इनको कोई चीज की फिक्र नहीं होती। तो घर वालों ने कहा अमीरुल मोमिनीन नमाज, तो हजरत उमर एकदम उठे, कहते लगे अल्लाह ये नमाज का वक्त है, और फरमाया उस शख्स का इस्लाम में तो कोई हिस्सा ही नहीं है जिसने नमाज को छोड़ दिया। फिर नमाज उन्होंने पढ़ी और उनके जख्म से खून बह रहा था, इतना वो लोग नमाज को अहमियत देते थे। अल्लाह अकबर। तो ये कुरान पाक की फजीलत, उसकी उसके ऊपर ईमान, और ये किताब इसका मकसद यहाँ पे बयान किया गया कि ये इसलिए है ताकि इसके जरिए आप दुनिया वालों को वॉर्न कर दें, और ये इसके ऊपर ईमान वो ही लाएंगे जिनका आखरत पे कोई ईमान होगा, जिनको आखरत की नहीं परवाह वो इसको क्या मानेंगे, और जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते होंगे। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अला अल्लाहि कज़िबा, और उससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है। अब यहाँ पे झूठे जो नबूवत के दावेदार हैं उनकी बात हो रही है, और ये भी कि जो लोग कहें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कोई कलाम नहीं नाजिल हुआ, कोई नहीं वही इनके ऊपर आती, इन्होंने ऐसे ही खुद ही बना लिया, उनकी बात है, कि उससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है जो ये कहे, झूठ झूठ ही कह दे, अल्लाह पे घाड़ ले, झूठ घाड़ ले, मैं मन इफ्तर अल अल्लाह ही कदीम, अल्लाह पे झूठ घाड़ ले, वो सबसे बड़ा जालिम है। और आला या वो कहे ऊही अलैहि वलम युहा इलैहि शैय, या वो कहे मेरे ऊपर भी वही आती है जबकि उसके ऊपर वही नहीं आती, वो मन काला सा उनजिलु मिसला मा अनजल अल्लाह, या जो कहे कि मैं भी वैसा ला सकता हूँ कलाम जैसा अल्लाह ने इनके ऊपर नाजिल किया, मैं भी वैसा ला सकता हूँ, इसमें कौन सी ऐसी बात है, ये कहते हैं कुरान कहते हैं, मैं भी कलाम ला सकता हूँ, इस तरह का तो कलाम मैं भी बना सकता हूँ, जो अल्लाह ने नाजिल किया ना उसकी तरह, यानी कुरान की तरह कहता है कि मैं भी ऐसा कलाम ला सकता हूँ, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। समझ आई बात, कि जो अल्लाह पे ये कह के झूठ बांधता है, क्योंकि ये झूठ है ना कि जो कोई कहे उसके ऊपर वही नहीं आती हो लेकिन वो कहे मेरे ऊपर वही आती है, या नंबर टू वो मन काला सा उनजिलू मैं भी ला सकता हूँ जैसा ये कुरान है इस तरह का, तो मैं भी कलाम बना के ला सकता हूँ, मैं भी ऐसा कह सकता हूँ, ये कौन सी बड़ी बात है। बात समझ आई, ये सबसे बड़ा जालिम है क्योंकि इसने अल्लाह पे झूठ बांधा है। और ऐसा हुआ था कि मुसैलमा कजाब ने ये दावा नबुवत का झूठा दावा कर लिया कि मेरे पर भी वही नाजिल होती है जी, मैं भी उसने कुछ बोलना भी शुरू कर दिया कि मेरे पर भी जो वही नाजिल होती वही है, वलम युहा इलैहि शैय, उसके ऊपर तो कोई वही नहीं नाजिल होती थी, इससे बड़ा जालिम कौन होगा। और आज के आपके दौर में मिर्ज़ा कादियानी, उसने भी नबुवत का झूठा दावा करके लोगों को कहा कि मैं भी नबी, कभी मसीह मऊद और कभी कुछ अपने आप को कह के, और कि मेरे ऊपर वही आती है। और ये बात चाहे कोई माने या ना माने, ये सच है बात कि ये लोग इस तरह का दावा करते हैं, और इन इसकी किताबों में लिखा हुआ है कि मेरे पास जो फरिश्ता आता है उसका नाम टीची फरिश्ता है, मैंने टीची भी कहाँ से नाम रख लिया। हम सबको वॉर्न होना चाहिए क्योंकि ये लोग अपना काम बहुत तेजी से कर रहे हैं, अहमदीयत कादियानियत। तो मिर्जा कादियानी उसने कहा कि मेरे ऊपर वही आती है और मेरे वही लाने वाले फरिश्ते का ये नाम है, अल्लाह ताला फरमाते हैं इससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है। चलो उसको तो आप कहते हैं मुसैलमा कज़्ज़ाब गुजर गया, आज के जमाने के ये हैं जिन्होंने इतने लोगों को गुमराह कर दिया, इतने लोगों को अपने पीछे लगा के उनको देखो हक से हटा दिया, क्या होगा इनका अंजाम। और जो कहे मैं भी ला सकता हूँ ऐसा कलाम, और उस जमाने के अंदर भी एक आदमी था जिसने ये दावा किया था और उसने कहा कि मैं भी आगा, उसका नाम था अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरह, लेकिन वो फिर बाद में फतेह मक्का के मौके पर यानी मुसलमान हो गया था। तो जो भी ये कहता है कि ऐसा, जबकि कुरान तो चैलेंज करता है कि ला सकते हो तो ले आओ एक ऐसा कलाम, तो कहते हैं हम भी तो ला सकते हैं, हम भी ऐसा बना सकते हैं, हमें तो ऐसी कौन सी बात है। तो अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों का अंजाम बताया, वाला तो राह इन जालिम हूँ ना फिर अमरात मौत, और काश कि तुम देख सको इन जालिमों को जब ये मौत की बेहोशियों में होंगे। बात है कि कयामत जो आनी है वो तो बाद है, जब मौत ही शुरू हो जाएगी ना उसकी गमरात उसकी बेहोशियां शुरू होंगी तब इनकी हालत देखें, ए नबी काश आप देख सकें कि इस वक्त इनकी हालत क्या होती है। वल मलाइका तो बासतु अईदीहिम, फरिश्ते फैलाए होंगे अपने हाथों को, अखरिजू अनफुसकुम, निकालो अपनी जानों को, अब निकालो अब अपनी जानों को, यानी ये किस लिए, अब कोई अपनी जान को खुद नहीं निकाल सकता, ये क्यों कहा जाएगा, इसलिए इनकी जिल्लत के लिए, इनकी बुराई के लिए, इनको रुसवा करने के लिए निकालो अब अपनी जान, क्योंकि वो मारेंगे इनको। हाँ जब मारेंगे, जब इनको जाहिर है जब काफिर की मौत का वक्त आता है, ऐसे लोगों की जो खुद कहते हैं कि हमारे ऊपर भी हम भी नबी हैं, हमारे ऊपर भी वही आती हैं, और ये कौन सा भाई बड़ा कलाम है, हम भी ऐसा ला सकते हैं, तो इनकी हालत ये होगी कि फरिश्ते जब अजाब दिन उस वक्त जान निकालने के लिए आते ना उनकी भी या काफिरों की भी, तो उनको उसी वक्त अजाब की सजाओं की और तौक और जहन्नम और गर्म पानी और अल्लाह के गजब की उनको बशारत देते हैं। अब जो उनकी रूह होती है वो तो परेशान हो गई कि ये हो क्या गया मेरे साथ, वो फिर जिस्म के अंदर भागती है कि मैंने निकलना नहीं है, तब फरिश्ते उनको थप्पड़ मारते हैं, उनको चेहरों पे, उनकी पीठों पे, उनको कहते हैं निकालो अपनी जान, आज तुम्हारे लिए जिल्लत वाला अजाब है। क्यों? अल्यौमा तुजज़ूना अज़ाबुल हुनी बिमा कुंतुम तकूलूना वल्लाहि गैर अल हक, कि तुम अल्लाह पे नाहक बातें करते थे, झूठ मानते थे कि तुम्हारे पर वही आती, तुम्हारे पर तो अल्लाह ने कोई वही नहीं नाजिल की। यानी कितना बड़ा अल्लाह के पर बोहतान है कि कोई बंदा ये ऐसा दावा कर दे। वकुम तुम अन आयाती ही तस्तकबीरून, और तुम अल्लाह की आयात से तकबर करते थे कि जो है ना ये कुरान क्या बड़ी बात है, हम कुरान ले आते हैं, हम अपना कलाम ले आते हैं, और उसने तो बना भी लिया था मुसैलमा कज़ाब ने, पता नहीं क्या क्या उसकी लिखे भी हुए हैं, कई तफसीरों में भी आप पढ़ सकते हैं कि वो क्या कहता था। मैं जैसे मतलब जैसे कि मैं बड़ा कोई मेरे ऊपर कोई कलाम उतरा हुआ, क्या तुमने अपने रब की तरफ नहीं देखा, उसने किस तरह हमला को पैदा किया, उसे एक रूह निकाली, बारी खाल और पेट के अंदर दौड़ती है, इस तरह की बातें। तुमने तुमने फील को उस अलम तरह कई फाला रब कभी असाबिल फील से लेके, उसने भी एक निकाल ली कि तुमने इसको देखा फील को, वो कैसा है, उसकी सूंड ऐसी है, उसकी इस तरह की बेकार चीजें बना के उसने अपने कलाम में। तो ये है तकब्बुर अल्लाह के कलाम से, कि कोई ये समझेगे मैं भी वैसा लेकर आ सकता हूँ जैसे अल्लाह ने कलाम उतारा है, इसका मुकाबला करता है कोई? तो ऐसे लोगों के लिए ये अजाब है, अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए। तो ये गमरात उल मौत जो है ना, यहाँ इससे पता चल रहा है, ये जो यहाँ पे इससे आगे आप पढ़े अल यौम तो जदौन अजाब अल, आज तुम्हें दिया जा रहा है रुसवाई का अजाब। ये आज कौन सा है? ये उनकी मौत का वक्त है ना। इससे पता चलता है कि अजाबे कबर बरहक है, जो लोग इसका इनकार करते हैं कुरान में इसका सबूत है, क्योंकि देखिए अभी तो कयामत आई नहीं, तो ये अल्यौम किसकी बात हो रही है? ये उस वक्त की जब उनकी मौत आई है, फरिश्ते आ गए हैं, उस वक्त की बात की जा रही है कि आज यानी उस वक्त से ही अजाब शुरू हो जाता है, वेट नहीं किया जाएगा कयामत तक। तो अजाबे कबर बरहक है, और कब अजाबे कबर का मतलब, एक तो लोग बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार होते हैं कि वो समझते हैं कबर के अंदर जाएगा ही तो अजाब होगा। अजाबे कबर का मतलब ये, चाहे वो दरिंदे ने खा लिया, चाहे समुद्र में डूब के मर गया, चाहे मरने के बाद जो अजाब शुरू हो जाता है उसको अजाबे कबर ही कहते हैं, चाहे वो कबर में दफनाया गया या नहीं दफनाया गया, उसको अजाबे कबर कह दिया जाता है, क्योंकि यूजली तो कबर में ही दफनाया जाता है। तो उसको कबर ना भी मिले तब भी अजाबे कबर, इसलिए कि मौत के बाद जो अजाब शुरू हो जाता है, तो ये उनको अजाब होगा। क्यों? इसलिए कि वो ये काम करते थे, इनकी ये बातें थी कि जो अल्लाह के ऊपर उन्होंने ना हक झूठ बोले हैं, जो बातें ये तो अल्लाह के ऊपर झूठी बात कर रहे हैं ना, कि अल्लाह मेरे ऊपर कोई चीज नाजिल कर रहा है, कोई वही नाजिल कर रहा है, जबकि अल्लाह ने नहीं नाजिल की। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी। तो ये कुछ बातें अब हो चुके, थोड़ा सा अगर मैं आप लोगों का और टाइम ले लूं, मैंने जानबूझ के पहले नहीं बात की, मैंने कहा ये ना हो कि टाइम ना हो, ये थोड़ा सा वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी ही के ऊपर उसी में बात करना चाहती हूँ। उसके बाद तो आपको समझ आ गई होगी कि अगली आयत में तो कुरान पाक का मकसद बयान किया गया है, कि क्यों कुरान भेजा गया, ये कैसी किताब है। मगर थोड़ा सा वमा कदरुल्लाह का कदरी ही, कि कैसे आज के दौर में अल्लाह ताला की कदर नहीं की जाती जैसे करने का हक है। क्या मुसलमानों में भी ऐसी कोई चीज है कि अल्लाह की कदर ना पहचानी जाए? जो अल्लाह को मानने वाले हैं वो उसकी कदर ना पहचान, वो उसको वो हक ना दे जैसे कि उसकी ताजीम का हक है, ठीक है, या उसकी नऊज बिल्ला अल्लाह माफ करे उसकी ना कदरी करे, उसकी वैसी पहचान उनको ना हो जैसी होनी चाहिए, ये मतलब है यहाँ पे। तो आज के दौर में इसके ऊपर कैसे लोग बात कर रहे हैं, क्या आज के दौर में भी ऐसा किया जा रहा है? याद रखिए कि जब अल्लाह ताला को वो हक ना दिया जाए और उसकी ताजीम का वो हक ना अदा करें जैसे कि करना चाहिए, तो ये उसकी कदर ना करना। जैसे कि मिसाल के तौर पे बाज लोग मसलन अल्लाह के नबियों को उनकी शान घटा देते हैं, ये भी अल्लाह ताला की कदर ना करना। इसलिए कि यहाँ पे देखें क्या कहा गया कि अल्लाह ने किसी बशर पे कुछ नाजिल नहीं किया। अब बात उन्होंने अल्लाह के ऊपर तो नहीं कुछ कही, बस उन्होंने ये कहा कि किसी भी इंसान के ऊपर कुछ नाजिल नहीं किया, ये भी अल्लाह ताला की कदर को ना जानना है। अल्लाह की हिकमत यानी और उसका एक फैसला उसको ना मानना है। पर अब देखें आप कि आज के दौर के अंदर बाज लोग रसूलों की कदर नहीं जानते और औलिया अल्लाह को रसूलों के भी ऊपर बढ़ा देते हैं। मसलन है, बाज वाइजीन को आपने ये कहते सुना होगा कि खजर अलैहिस्सलाम तो बली थे और मूसा अलैहिस्सलाम नबी थे, तो देख लो फिर इल्म के लिए तो नबी को भी बली के पास जाना पड़ा, हालांकि पता नहीं है कि खजर अलैहिस्सलाम भी नबी थे। तो इस तरह की बात करते हैं, इस तरह से कहते हैं, देख लो फिर जकरिया अलैहिस्सलाम जब बेटा उनको चाहिए था तो वो भी एक वलिया के पास गए जो हजरत मरियम थे और वहां दुआ की तो उनकी दुआ कबूल, लिहाजा हम भी औलिया अल्लाह के पास जाते। नहीं ऐसी बात नहीं, उन्होंने तो आपने पढ़ा है सूरह आले इमरान में बेमौसमी फल देख के उन्होंने खुद अल्लाह से दुआ की। लेकिन इस तरह की मिसालें देख के ना वो कहते हैं कि औलिया अल्लाह तो रसूलों से भी ऊपर, और रसूलों की शान को घटा के वो सोचते हैं कि हम औलिया अल्लाह को ऊपर कर रहे हैं तो बहुत बड़ा हम कारनामा कर रहे हैं, हालांकि ये भी अल्लाह की कदर ना करना। इसी तरह बाज लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को अल्लाह से बढ़ा देते हैं और ये नहीं सोचते कि वो क्या कह रहे हैं। बाज वाइजीन को सुना है कि वो वाज करते हुए कहते हैं, देखो जी वो हदीस आती है उहद के अंदर हजरत कतादा की जो आंख निकल गई थी रुखसार पे गिर गई थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंख लौटा दी और दोनों आंखों से ज्यादा ये वाली यानी दूसरी आंख से भी ज्यादा ये आंख ज्यादा दुरुस्त हो गई, तो इसका मतलब है जो मुस्तफा ने आंख दी वो अल्लाह की दीवी आंख से भी ज्यादा अच्छी है। हाय अस्तगफिरुल्लाह, वो किस तरह बात। इस तरह मैंने आपको शेर सुनाया, खुदा जिसको पकड़े छुड़ाए मोहम्मद, मोहम्मद का पकड़ा छुड़ा कोई नहीं सकता, तो माज अल्लाह वो क्या कहते हैं, कितना बड़ा कुफर है ये वहां कदरुल्लाह का कदरी है कि अल्लाह के रसूल को अल्लाह से भी बढ़ा दिया। इसमें कोई इस्लाम की खिदमत नहीं है, इसमें कोई आसन अगर हम कुछ नहीं होंगे। अल्लाह ताला अबू तालिब अबू लहब और दूसरों को अजाब देगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी शिफात नहीं करा सकेंगे, उनको हमेशा के अजाब से नहीं छुड़ा देंगे। फिर ये शेर कैसे हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मक्तूम को देख के एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरा तेवरी चढ़ाई थी तो क्या हुआ था, अल्लाह ताला ने सूरह हबसा उतार दी। तो याद रखे ये कोई खिदमत नहीं है इस्लाम की, ये जुल्म है, ये अल्लाह की कदर ना करना है। फिर वो कहते हैं देखें जी जुनेद बगदादी जो थे वो या अल्लाह कहते थे जमीन पे चलने लगे और उसके बाद दरिया उन्हें पार कर लिया और कोई कश्ती भी नहीं थी, चलते चले गए दरिया। अभी मैं आपको हिकायतें बता रही हूँ जो कि कितनी लोगों में मशहूर है। तो जब उनको ऐसे जाते हुए किसी ने देखा तो पूछा उसने कि मैं किस तरह इसी तरह जाऊं पानी पे, तो जुनेद बगदादी ने कह दिया तू या जुनेद कहता हुआ चला जा। तो उसने यही किया, जब दरिया के बीच में पहुंचा तो उसने सोचा कि मैं इनका नाम क्यों ले रहा हूं, मैं अल्लाह का नाम क्यों नहीं लेता। तो जी वो उसमें उन्होंने लिखा कि भाई शैतान ने दिल में वसवसा डाला कि खुद तो या अल्लाह कहते हैं और मुझे कहते हैं या जुनेद को, तो मैं तो या अल्लाह कहता हूँ। जब उसने या अल्लाह कहा तो साथ ही वो डूब गया, डूबने लगा। तो उन्होंने फिर कहा कि तू या जुनेद कह तो फिर बचेगा। फिर जब उसने या जुनेद कहा तो फिर दरिया से पार हो गया। तो फिर उन्होंने कहा कि देखो तुम तो अभी जुनेद तक नहीं पहुंचे तो अल्लाह तक कैसे पहुंचोगे। अब मुझे बताएं ये क्या है, ये सारी शिरकिया ही तो बातें हैं और ये ऐसी हिकायतें बेशुमार हैं जो खुद ही बनाई हुई है, खुद ही घड़ी हुई है, कुछ ऐसी बात नहीं। वो बेचारे तो अली अल्लाह ऐसी बातें भी नहीं कह के गए, लेकिन इतनी लोगों में आम है यही है वमा कदरुल्लाह का कदर। उन्होंने अल्लाह की ताजीम ही नहीं वैसी जानी जैसी ताजीम करनी चाहिए कि या जुनेद कहने से तो बंदा पार लग जाता है, अल्लाह के नाम लेने से तो बंदा डूब जाता है। तो इसलिए इस तरह की हकायात से भी बचें, ऐसी बातों को ना मशहूर करें, ऐसी बातों को ना कहें, इससे अपने आप को आलूदा ना करें अपने ईमान को। अल्लाह ताला हमारे ईमान में इखलास अता फरमाए, अल्लाह ताला शिर्क से हम सबको महफूज रखे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكر للعالمين وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون